और जब मैं बीमार हो जाता हूँ ना, तो मुझे शिफा भी वही देता है, वो देता नहीं, वो ही देता है। इसलिए कि इसके भी बहुत सारे दावेदार खड़े हो जाते हैं, यहाँ जाएं शिफा मिल जाएगी, आए मुझे फलाना डॉक्टर मिल जाए तो शिफा मिल जाएगी। बस लोग हमारे मुल्कों के अंदर होता है ना, वो कहते हैं इलाज कराने के लिए अमेरिका ले जाओ तो वहाँ पे शिफा मिल जाएगी। शिफा देनी अल्लाह ने ही है। कितनी दफ़ा ये हमें यकीन होता है कि डॉक्टर कह दे नहीं जी इसका आप कुछ नहीं हो सकता, तो हम कहते बस हरफे आखिर हो गया। हम ये नहीं कहते शिफा तो अल्लाह ने देनी है। अल्लाह अकबर। आप ज़रा एक दफ़ा कह के तो देखें ये बात, उसी ने मुझे पैदा किया, वही मुझे राह दिखाता है, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है। इसमें कितना प्यार है ना, कितनी गहरी मोहब्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र आ रही है। और फिर सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर, ये नहीं वही है जो मुझे बीमार करता है, इतना भी कहना गवारा नहीं किया। हालांकि देखिए खैर और शर सब अल्लाह ही की तरफ से है, लेकिन एक मोहब्बत होती है ना, तो ये भी अदब और मोहब्बत, अदब भी तो हम भूल गए ना। अदब हमें आजकल बड़े छोटे का ही नहीं कोई अदब रहा, किसी का भी नहीं कोई अदब, कोई पता ही नहीं है कि मैनर्स क्या होते हैं। इवन अल्लाह ताला के बारे में बाज़ दफ़ा लोग ऐसी बातें करते हैं कि समझ ही नहीं आती है, अल्लाह ये किसकी बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं और इस तरह बोल रहे हैं। तो अदब सीखना चाहिए, इतनी सी बात भी गवारा नहीं कि ऑल दो इट्स अ फैक्ट, लेकिन इतनी सी भी बात गवारा नहीं कि मैं ये कहूँ कि वो मुझे बीमार करता है। हम तो शिकवे शिकायतें नहीं छोड़ते, अगर बीमार कभी हो जाए आए अल्लाह मैंने मुझे ही बीमार करना था, तुझे पता नहीं था मेरा ये काम था वो था वो था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, बीमारी हो या कुछ भी हो। सुभान अल्लाह, हम ये पहले भी वैसे पढ़ चुके हैं, ये बातें पैगंबरों की भी हैं कि वो कभी ऐसी बातें नहीं कहते थे मुंह से कि जिसमें कोई बुरी बात को अल्लाह ताला की तरफ नस्बत दें, शर की बात को अल्लाह की तरफ नस्बत दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तहज्जुद में जो दुआएं पढ़ते थे ना, उनमें एक लंबी दुआ भी है जिसके आखिर में आता है लब्बैक व सअदैक, अल्लाह मेरी तो खुश नसीबी कि मैं तेरे आगे हाजिर हो गया, वल खैरु कुल्लुहु बियदिक, और खैर जो है ना सारी की सारी तेरे हाथ में, व शर्रु लैसा इलैक, लेकिन शर तेरी तरफ से नहीं, अल्लाह की शर भी अल्लाह की तरफ से, लेकिन शर अल्लाह तेरी तरफ से नहीं। ये अदब है और ये मोहब्बत है, इंतहा मोहब्बत। जैसे आप, वैसे मिसाल तो मैं वैसे ही देती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। आप अपने वालदैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं तो आप हमेशा उनकी अच्छी बातें करते, ये नहीं करते वो जब मैं बचपन में थी तो मुझे थप्पड़ भी मारा था, और वो जब मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे वो फलां चीज़ लेके भी नहीं दी थी, ऐसे नहीं कहते कभी। ये अदब है ना। तो जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। तो शिफा जो अच्छी चीज़ है उसकी नस्बत अल्लाह की तरफ की, लेकिन बीमारी की नहीं की। सीखें इसे, ये कभी भी अल्लाह ताला की तरफ ये ना करें अल्लाह तूने ऐसे क्यों, अल्लाह तूने तू तो ऐसे ही करता है, नहीं। अल्लाह अकबर। तो जैसे लगता है कि मोहब्बत के रस में घुली हुई बातें हैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब सिंपल सिंपल बातें, लेकिन कितनी खूबसूरत, और एक जहान है इनके अंदर। और आप ये भी देखें कि फ़ाहुआ यशफीन, इसका भी यकीन अपने अंदर बिठाने की ज़रूरत है। उसने ही मुझे शिफा दे दी, मैं दवा खाऊं ये नहीं, दवा खाने से नहीं कोई आपको मना करता, ऑपरेशन कराने से नहीं मना करता, लेकिन दवा जो है उसकी तरफ देखे और ये सोचे कि ये क्या ये मुझे शिफा देगी, नहीं ये मुझे शिफा नहीं दे सकती, शिफा अल्लाह के हाथ। ये डॉक्टर वो कहते हैं ये डॉक्टर है उसके हाथ में शिफा है, शिफा कैसे उसके हाथ में हो सकती, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है ना, अल्लाह के हाथ में शिफा है, अल्लाह ताला उससे ठीक करा दे या किसी और से ठीक करा दे, अल्लाह ताला किसी कंपनी के ज़रिए रिस्क दे दे या घर बैठे ही आपको दे दे। देख लेना आजकल लोग घर बैठे ही कितना कमा रहे हैं, पता नहीं ज़रा ज़रा सी कोई वीडियो बना के ऊपर अपलोड कर देते हूँ उससे उनके पैसे बन रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लाने किसी को घर बैठे खिलाना है तो वहीं खिला देता है, मंथली उनको मिलता चला जा रहा है। तो देखिए ना, उसने जिसको रिस्क देना है, जहाँ पे भी वो होगा, एक कीड़े को पत्थर के अंदर भी वो रिस्क दे रहा है, और शिफा उसके हाथ के अंदर है। चाहे तो किसी दवा के जरिया बना दे, किसी डॉक्टर को जरिया बना दे, किसी को भी बना दे। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिनका ईमान कितना पक्का है, और उन्होंने अपने रब को पहचाना है तो तब ये कह रहे हैं ना, पहचाना है। उनकी अपनी आप बीती है ये, उन्होंने ये बात को समझा है, सिर्फ डायलॉग नहीं है, भूख प्यास में भी समझ आई है कि अल्लाह ही खिलाता है पिलाता है, बीमारी में भी समझ आया कि अल्लाह ही शिफा देता है। हमें जब कोई ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई वाकया हो जाए जो बहुत ही कोई सुपर नेचुरल टाइप कोई चीज़ हो जाए, तो फिर हम कहते हैं हाँ वाकई मुझे तो यकीन आ गया, अल्लाह ताला ही खिलाता पिलाता है। आपको तो वैसे ही यकीन करना चाहिए, आगे पीछे किसी का हाथ नज़र आ रहा होता है इसलिए नहीं यकीन आता। अचानक से कोई चीज़ ऐसी हो गई, कोई चीज़ खाने की सामने आ गई, आप बड़ी भूख में थे, बड़ी प्यास में थे, अचानक किसी ने आपके आगे कोई चीज़ कर दी, आपको अब लगा कि हाँ अल्लाह खिलाता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो ये यकीन तो हमेशा होना चाहिए, वल्लदी युमीतुनी थुम्मा युहीन, और वही है जो मुझे मौत देगा और ज़िंदा करेगा। मौत उसके हाथ में है, ये यकीन है, वही मौत देता है और वही ज़िंदगी देता है, लेकिन यहाँ पे भी हुआ नहीं है, इसलिए कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं मौत दे सकता हूँ और मैं ज़िंदा कर सकता हूँ। नमरूद ने दावा करने की कोशिश की थी, और फिर क्या किया था, एक को इधर से पकड़ लाया, उसको सजाए मौत दे दी, एक को छोड़ दिया, उसने सोचा यही ज़िंदगी और मौत देना, उसको पता ही नहीं कि ये मौत और ज़िंदगी क्या चीज़ होती है। इसीलिए आप देखें, मौत भी इंसान के बस में नहीं है। आप देखते हैं लोगों को बिस्तरों पे एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं, कोई बीमारी ऐसी या लग जाती है कुछ है, बीमारी से भी मरते नहीं हैं वो, एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं बिस्तरों पे, मौत मांगते मौत भी नहीं आती, या रजील बुढ़ापा आ जाता है बिस्तर पे पड़े में, सिर्फ सांस चल रही है लेकिन मौत नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, फिर वो ही ज़िंदा करेगा मुझको। ये ज़िंदा करना भी दोबारा कोई दुनिया में दावा कर ही नहीं सकता कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ, वरना आज तक कई मुर्दों को लोग ज़िंदा कर चुके होते, लेकिन क्यों ये जो बाबे बैठे होते इश्तहार देते हैं कि किस्मत बदल देंगे, फलाना कर देंगे, ये भी ये क्यों नहीं कहते कि हम ज़िंदा कर देंगे किसी को, कुछ चीज़ उनके हाथ में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हुआ की ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि कोई ना किसी को मौत दे सकता है और ना दोबारा ज़िंदा कर सकता है। तो अगर ये यकीन है ना कि मौत उसके हाथ में है, तो फिर कभी भी किसी की मौत के ऊपर गिला शिकवा नहीं करना चाहिए कि इसको मौत क्यों आ गई, क्योंकि इसका मतलब अल्लाह की मर्ज़ी से ही आती है। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये जल्दी क्यों आ गई, ओके ये भी उसका ही फैसला है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं ना कि मुराद ये है कि मुझे नाफरमानियों की वजह से मौत दे देता, और तौबा जो है वो शिफा है, दिल मुर्दा हो जाता है, वो अल्लाह ताला की इताअत से हट जाता है, ये भी एक मौत है, नाफरमानियाँ करना भी एक मौत है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे मौत दे दे, जिसको चाहे उसका दिल ज़िंदा कर दे। क्योंकि गुनाहों से भी तो दिल मर ही जाता है ना वाकई। वल्लदी, और आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, वल्लदी अत्मऊ अन यग़फिर ली ख़तीअती यौमद्दीन, कि अब बाकी सारी बातों के ईमान के बाद अब मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे बख्श भी दे मेरी ख़ताओं पे क़यामत के दिन। ये कौन बात कह रहा है, खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त कह रहे हैं कि अब मैं इस सारी बात के बाद अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बताया, उसके अकीदे को बयान किया, अपना ईमान की बातें ऐसे की, और उसके बाद कि वो मेरी ख़ताओं को बख्श दे, ये नहीं है कि मेरी नेकियों पे मुझे दे कोई जज़ा, मुझे जन्नत मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने ऐसे किया, मैंने तो ये किया, मैंने ये कुर्बानी दी, ये कुर्बानी दी, मैं तो आग में भी कूद पड़ा और ऐसे हो गया। कुछ भी ऐसी बात नहीं, सिर्फ ये कि सब बातों के बाद कि मेरी बख्शीश हो जाए बस। कोई दुनिया में बंदा ऐसा नहीं है जो कह सकता हो कि मैंने तो इतनी नेकियां कर ली, अब मुझे तो ये है कि अल्लाह ताला बस अब मुझे जन्नत दे देना। नहीं, बस अल्लाह मेरी खताओं को बख्श देना ये होना चाहिए, बस मुझे माफ कर देना ये होना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। और ये कितनी आजजी है उनकी कि इतना कुछ करके जिंदगी में भी वो जो मासूम है खताओं से, उन्होंने तो कभी कोई खता नहीं की। पैगंबर जो होते हैं, हमारा ईमान है कि पैगंबर मासूम अनिल खता होते हैं, इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं अल्लाह ताला मुझे बख्श देना मेरी खताओं को। यानी उनके लिए जो अल्टीमेट सक्सेस है वो क्या है कि बस मेरी गुनाह माफ हो जाए, कयामत के दिन मुझे बख्शीश का परवाना मिल जाए। अल्लाह हु अकबर, मैं सोचती हूँ हम कहाँ हैं, हमें पता नहीं दिमागों में क्या है कि हमें पता नहीं ये तो मैं काम कर रही हूँ बस अब तो मुझे जन्नतुल फिरदौस में ही जगह मिलनी है, मेरे तो दर्जे ये होंगे। क्लाइमेक्स जो कामयाबी की जो मेराज है वो क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से बख्शीश मिल जाए, बस माफ कर दे वो, ये है। ऐसा ईमान होने के बावजूद और इतनी नेकियां करने के बावजूद बख्शीश का सवाल, जबकि कोई गुनाह भी नहीं है। हम तो ये सोचते ना, हमें मेरे मैंने कौन से ऐसे गुनाह किए, हमें तो ये समझ ही नहीं आती कि हमने कोई गुनाह किया भी है। मासूम खुद को समझते हैं और जब बख्शीश भी मांगते हैं तो हमें कोई रियली वो इतना पैशनेट नहीं होते कि हम मेरी बख्शीश ही हो जाए, या तड़प रहे हैं कि मेरी बख्शीश हो जाए, क्योंकि हमें लगता ही नहीं ना कि हमने कोई बहुत ज़्यादा कुछ गुनाह कर दिए। क्या किया है मैंने, हम तो ये पूछते हैं मैंने क्या कर दिया, ठीक ही तो हूँ। तो उनको कितनी फिक्र है, गुनाह तो उनके होते नहीं, खताएं हैं, गुनाह तो हमारे जैसे लोगों के होते हैं, कोई गलती ना, उनको माफ़ कर दे कयामत के दिन। आप देखिए पैगंबर उस दिन कितनी परेशानी के अंदर होंगे जब एक एक अपनी खता को याद करके कह रहे होंगे कि नहीं नहीं हम अल्लाह ताला के आगे नहीं बात कर सकते, हम नहीं कह सकते। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी सी बात को याद करके कि मैंने ये सिर्फ कह दिया था कि मैं बीमार हूँ, ये सिर्फ कह दिया था, या बड़े बुत ने इनको तोड़ा, इस बात के ऊपर जो कि दावा करने की बात थी, जब लीक की बात थी, फिर भी नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह मैंने वो दुआ की थी अपने बेटे के लिए, वो अल्लाह को पसंद नहीं आई थी, मैं तो नहीं जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैंने उसको, हालांकि उन्होंने कोई किसी को इंटेंशनली कोई कत्ल तो नहीं किया था, मुक्का मारा था, एक दोनों को छुड़ाने की कोशिश की थी, वो उसको याद कर रहे हैं। और हमारे जैसे जिनके पता नहीं कितने गुनाह हैं कि हमें खुद भी याद ही नहीं है, कल की बात नहीं याद रहती है, कहाँ हमें गुनाह याद है कि सारी ज़िंदगी हमने पता नहीं कितनी सियाकारियाँ जमा कर ली, फिर भी हमें इतनी परेशानी नहीं है कि जैसे इन्हें पैगंबर को परेशानी है। तो मुझे और आपको कितनी परेशानी होनी चाहिए। हाँ हमें यह परेशानी ज़रूर होती है, मेरी जॉब पे क्या होगा और मेरे फ्यूचर में क्या है, मेरे करियर का क्या बने, आए आए कुछ और चीज़ों की परेशानी हो जाती है, लेकिन ये नहीं परेशानी होती कि मेरी खताएं, मेरे गुनाह, अल्लाह मैं क्या करूं, कैसे मैं तुझे फेस करूं, इसकी परेशानी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह रहे, मुझे और आपको क्या कहना चाहिए फिर? और फिर ये नहीं मुझे यकीन है कि मुझे तो माफी मिली जाएगी, मुझे उम्मीद है। यकीन कैसे कोई कर सकता, और हम तो यकीन किए बैठे हैं, किए बैठे हैं यकीन के बस सब माफ हो जाना। वो उम्मीद रखते हैं, वो तमा रखते हैं, उनको अपनी नेकियों पे भरोसा नहीं है कि मेरी तो नेकियां इतनी हैं, अब मेरी नहीं बख्शीश होगी तो और किसकी होगी। याद रखे हमेशा जो नेक लोग होते हैं ना, वो अपने आमाल को कुछ नहीं समझते, उनको अपनी मगफिरत की फिक्र रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में देखें 100 दफ़ा तौबा इस्तग़फ़ार करते थे, यानी इमेजिन क्या उनकी गलती थी, कुछ भी नहीं। हमें तो मेरे ख्याल में सजदे से सर ही नहीं उठाना चाहिए, हमारी तो इतनी गुनाह है। फिर अगेन बात वही थी, नहीं नहीं हमने क्या किया, हमने कौन सा किसी बुरा किया। अपनी तारीफें बहुत याद रहती, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैंने तो ऐसे कह दिया, मैंने तो ये कर दिया, लेकिन गुनाह कभी नहीं याद रहता। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला के सिवा कोई गुनाह बख्शने वाला नहीं, इसीलिए वो यही कहते हैं कि वो ही है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ, वो रब है जो कि वो बख्श दे मेरे गुनाहों को। जब इतनी सारी बातें करके ना फिर अब एक दुआ करते हैं, आप देखें अल्लज़ी खलकनी अल्लज़ी वो फहुवा यहदीनी हुआ युतईमुनी यस्कीनी यशफीनी फिर युमीतुनी फिर युहयीनी फिर यही कि वो मेरी खताएं बख्श दे, उसके बाद दुआ है। तो उलमा कहते हैं कि दुआ का अदब क्या है, एटिकेट क्या है, कि दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला की बहुत तारीफ की जाए, अकीदे की बात की जाए, अल्लाह मेरा तेरे ऊपर ईमान है, अल्लाह मेरे ऐसी बातें की जाए, अल्लाह तू रब समावाती वल अर्द है। आप देखिए जितनी अल्लाह ताला की तारीफ कर सकते ना उतनी करें, एंड में जाके फिर दुआ करें जितनी कर सकते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर कह देता है उसके बाद जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला कबूल करता है। तो ये क्या है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की तारीफें ही तो हैं, उसकी तारीफ के कलिमात हैं। तो ये जब आप कह के अल्लाह ताला से दुआ करते तो कबूल होती है। तो इसलिए चाहे आप अपनी ज़ुबान में कहते रहें अल्लाह मैं तो तेरी मोहताज हूँ, अल्लाह सारी ही कायनात का मालिक तू है, अल्लाह तू तो कौन क्या के करने वाला है, अल्लाह ताला तेरे ख़जानों में तो कोई कमी नहीं है, अल्लाह तू हर एक से बेनियाज है, अल्लाह मैं तेरी मोहताज हूँ, तू गनी है, अल्लाह मैं तो फ़कीर हूँ, अल्लाह तू है अता करने वाला है, अल्लाह ताला मैं तो खताओं का गुनाहों का पुतला हूँ, अल्लाह पाक ज़ात तो तेरी है। मतलब आप जितनी तारीफ़ कर सके, फिर जब आपका एक कनेक्शन बन जाए तो तब आप दुआ करें। किसी के बारे में सुन रही थी कि वो मुस्तजाब दावात है, यानी दो जो दुआ करते थे ना वो कबूल होती थी। तो कहते हैं कि कोई उनके पास आया तो उसने कहा कि मुझे ना औलाद की दुआ करें मेरे लिए, तो उन्होंने इतनी अल्लाह की तारीफ़ की, इतनी जो भी अल्लाह की तारीफ़ की आयात थी ना आय कुरान की अल्लाह ताला की तारीफ़ की, वो आयतें पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, उसके बाद फिर उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 बेटे काफ़ी हैं। उसने क्या कहना था, उसके पास तो औलाद ही नहीं थी बेचारे के पास, 6 बेटे काफ़ी हैं ने कहा, तो अल्लाह ताला से दुआ की कि भाई अल्लाह इसको 6 बेटे दे देते। कहते हैं जो देखने वाले थे उन्होंने कहा कि हमने देखा कि इसकी 6 बेटे हुए हैं। फिर तो अल्लाह ताला की तारीफ़ के कलिमात जितने आप कहेंगे ना, चाहे कुरान की आयतें हैं चाहे आप अपनी ज़ुबान में कहें, अल्लाह की तारीफ़ बहुत बयान करें, अल्लाह ताला की बड़ाइयाँ बयान करें। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वाला कलिमा है कि ये उसमें अराफात के दिन ये सबसे ज़्यादा इसकी तरगीब दी गई है कि ये पढ़ा जाए, इसमें भी क्या है, मांगा तो कुछ नहीं है इसके अंदर, अल्लाह की तारीफ़ ही है ना, उसकी तौहीद है, उसको अपनी तौहीद की बात सबसे अच्छी लगती, और इसमें भी तौहीद है ना, वल्लज़ी हुवा युतईमुनी व यस्कीनी व हुवा यशफीनी वल्लज़ी युमीतुनी, ये तौहीद है। उसके बाद फिर दुआ है रब्बी हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे अता कर हुक्म, हुक्म का मतलब क्या, हिकमत भी है, हिकमत विजडम जिसको कहते हैं, इल्म भी है और सही वक्त में सही फैसला करने की सलाहियत भी है। देखिए इंसान अपनी ज़िंदगी में जब गलत डिसीजंस लेता है तो तभी मार खाता है ना, तो कभी कभी समझ ही नहीं आती कि क्या फ़ैसला करूं, क्या करूं मैं, इस तरफ ये काम करूं नहीं करूं। ये जो हिकमत है बहुत बड़ी चीज़ है, यो तिल हिकमत मैश है व मैं तिल हिकमत वक़द खुद ऊत या खैरन कसीरा, जिसको हिकमत मिल गई ना उसको बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत देता। तो ये कुव्वत फ़ैसला, सही वक्त पे सही फ़ैसला करना, सही वक्त पे सही डिसीजन लेना, ये अता फरमा दे मुझे। और इसे देखें बहुत सारी काम जिंदगी के फिर सही हो जाते हैं जब आप सही फैसला करते हैं। और जब आप देख लें बच्चों को भी गलत फैसले कर लेते हैं तो उसके बाद कैसे भुगतना पड़ता। अब हम उनको कहते रहते हैं आपके नहीं ये बात सही नहीं है, ये फैसला सही नहीं है तुम्हारा, तो वो हिकमत चाहिए उसके लिए। तो हुक्मन का मतलब कुव्वत फैसला और समझ बूझ और इल्म। तो ये सब नबुवत यहाँ से मुराद नहीं है, क्योंकि और जगह पे कुरान में हिकमत से हुक्म से मुराद नबुवत भी ली गई, लेकिन यहाँ पर चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तो पहले ही नबुवत थी तो वो नबुवत तो नहीं मांग सकते ना। अल्लाह ताला ने हिकमत दी तो वहाँ पे, तो दूसरी जगहों पर तो अल्लाह ताला ने अता फरमाई हिकमत, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हुक्म से मुराद यही है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दे, समझा दे, कुव्वत फैसला दे दे, फहम दे दे, मुनासिब वक्त पे मुनासिब काम करूँ, इल्म दे दे, विजडम दे दे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप मांगते हैं, ये खैरन कसीरा है। सोचे अच्छा, हमें तो ये बातों की समझ भी नहीं आती कि मांगना क्या ना, तो हम हिकमत तो मांगते भी नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर क्या मांग रहे हैं? सालेहीन का साथ। कौन सी सोसाइटी में रहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जहाँ पे सब तरफ शिर्क है, गुनाह है ये, लेकिन सालेहीन का साथ मांगते हैं। यानी या तो अल्लाह ताला मेरा माहौल ही बदल दे, या फिर अल्लाह मुझे ऐसी जगह दे दे यहाँ पे सालेहीन का साथ हो। वो खुद इतने साले हैं, खुद इतने नेक हैं, लेकिन साथ मांग रहे हैं सालेहीन का। हम कहते हैं हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम चाहे गंदे मंदे माहौल में भी रहें, लेकिन मैं जब खुद नेक हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुद तो सही हूँ ना। अगर मेरी दोस्तें नहीं भी सही हैं तो पता होता है कि नहीं है वो सही, वो दीन पे नहीं चलने वाली हैं, फिर भी उनको पकड़ा हुआ कहते हम खुद तो सही हैं ना। तो पैगंबर मांग रहे हैं दुआएं कि सालेहीन का साथ दे, आप बुरे लोगों को दोस्त बना लेते हैं, अल्लाह के नाफरमानों को दोस्त बना लेते हैं, वो लोग जो आपको अल्लाह से दूर ले जाने वाले होते हैं और दुनिया में मगन है उनके साथ दोस्तियाँ रखते हैं किसी भी वजह से, लेकिन क्या हमें फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क पड़ता है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ये दुआ की थी, उनको तख्ते मिस्र मिल गया था, उसके बाद भी वो कहते हैं अलहकनी बिसालेहीन, लेकिन वो तो आखरत के लिए कह रहे हैं, इन्होंने तो ओपन दुआ है अलहकनी बिसालेहीन, यानी दुनिया में भी सालेहीन का साथ दे और आखरत में भी। क्योंकि जो इंसान का दोस्त होता है ना, जो इनके इंसान के साथी होते हैं, उनके इंसान के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है, जो वो होगा वही आप होंगे, आपके अंदर भी ज़रूर वो चीज़ें होंगी जब भी आपने उसको दोस्त बनाया। तो नेक लोगों के साथ मिला लें, नेक लोगों के नेक, इसमें नेक माहौल भी आ जाता है, नेक दोस्त भी आ जाते हैं, नेक साथी भी आ जाते हैं, आप आपके जो स्पाउस है वो भी नेक, वो उस लिहाज से भी आपका आ जाता है कि नेकों के साथ मिला, यानी नेकों की कंपनी में मुझे रखना। तो आप बहुत अच्छी कंपनी मांग रहे हैं, फिर स्पाउस के साथ भी तो इंसान टाइम गुजारता है, वो भी तो आपकी कंपनी होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही प्यारी दुआ है, ये मुझे हिकमत भी दे दे और मुझे सालेहीन का साथ भी दे दे। जाहिर है अगर दुनिया में सालेहीन का साथ है तो आप भी नेकियों की तरफ जाएंगे, और आखरत में सालेहीन का साथ है तो वहाँ पर तो सालेहीन के लिए जन्नत है, तो वह जन्नत में होंगे, और सालेहीन की कंपनी इंसान को नेकी की तरफ ले जाने वाली होती है। लिहाजा इंसान तलाश करे सालेहीन की कंपनी और छोड़ दे बुरे दोस्तों को जो उसको अल्लाह से दूर करने वाले होते हैं। हम ये प्राइस पे कर लेते हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अल्लाह से हमें दूर कर रहा है, वो हमें दीन से दूर करता है, वो दीन की बातों का मजाक उड़ाता है, दीन के शायर का मजाक उड़ाता है, उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हमें बस ये पता नहीं किस भी जिस भी वजह से हम उनके साथ चिपके रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि हम इनको छोड़ के हम कितनी बड़ी प्राइस पे कर रहे हैं इसकी, इसके साथ दोस्ती की। इसीलिए क़यामत के दिन इंसान पछताएगा कि मैंने फ़लां को क्यों दोस्त बनाया, अपने हाथों को चबाएगा और कहेगा काश मैंने फ़लां को अपना दोस्त ना बनाया होता। तो हम नहीं करते कि हम उनको छोड़ के नए दोस्त बनाएं जो नेक हो, जिनके साथ हमारा दीन भी आगे ग्रो करे, हम प्रोग्रेस करें नेकी में। आप देखिए ना कि कितनी दफा ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों की वजह से नेकी के कामों से पीछे रहते हैं। दोस्त नहीं कर रही तो मैंने भी नहीं करना, या दोस्त ये चीज में दिलचस्पी लेती है तो वो मैं भी करूं क्योंकि वो दोस्त मेरी कर रही है। तो कितनी अल्लाह की नाफरमानियों की चीजें होती हैं जो हम अपने दोस्तों की वजह से करने पे मजबूर होते हैं। कोई कहता नहीं है, बस खुद ब खुद करते हैं। दोस्त जो कर रहे हैं, आपकी कंपनी अगर ऐसी है उसमें सभी वो कर रहे हैं तो आप भी करते हैं फिर। तो ऐसी कंपनी को छोड़ दें और सालेहीन का साथ मांगे। और फिर आगे वजाल ली लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन, और ए अल्लाह मेरी मेरे लिए जुबान दे दे सच्ची बाद वालों में। जुबान का मतलब क्या? जुबान का मतलब है तारीफ, अच्छी बात। वो तो जुबान से ही होती है ना, इसलिए यानी मेरे बाद अल्लाह मुझे अच्छी नामवरी दे, जिक्र खैर मुझे देना। और ये वो, अब हम वैसे कहते ना कि तारीफ नहीं चाहनी चाहिए, तो क्या ये तारीफ चाहना है? नहीं, हरगिज नहीं, ये तारीफ चाहना नहीं है। बल्कि अगर आप और करें तो आपको पता चलेगा इस दुआ का भी मकसद क्या है। दुनिया की तारीफ नहीं, नहीं बल्कि अल्लाह ताला से ये दुआ करें, अल्लाह ऐसे नेक आमाल की तौफीक दे कि मेरी आखरत का सामान बने और उन नेकियों को देखकर लोग दूसरे भी आमाले सालेहा करें, मेरे बाद भी लोग मेरी नेकियों की पैरवी करें। क्या जैसे कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो आप कहते हैं अब फलाना बड़ा ही वो सखी था, बहुत सदका करती थी, इतना तो आप सोचते हैं कि मैं भी सदका करूं। इतने लोग आए और उन्होंने कहा हमारी मदद करती थी, तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे आपके लिए तारीफ चाहना ये बहुत ही ज़्यादा मज़मूम चीज़ है, यानी कंडेम्ड है ये चीज़। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि दो भूखे भेड़िए भी बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाए ना तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितनी दो चीज़ें इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाती, यानी दीन का ही सफाया कर देती हैं। एक माल की मोहब्बत और एक जाह, स्टेटस, इज्जत की तलब। आज देखें आप दुनिया में कई सियासतदान और कई बड़े बड़े लोग किस वजह से पागल हुए फिरते हैं, वो ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, ये जाह की मोहब्बत, ये कुर्सी की मोहब्बत, स्टेटस, ये ओहदा, ये इज्जतों के मकाम पाने की मोहब्बत इतनी होती है कि इंसान को हर चीज़ करनी जायज़ कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते ना, अल्लाहुम्मा जालनी फ़ी आईनी सगीरन व फ़ी आयुन अन्नास कबीरा, अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में तो छोटा कर दे लेकिन लोगों की नज़रों में बड़ा कर दे। लोगों की नज़रों में बड़ा करना क्या है, मकसद क्या है? कि लोग नेक आमाल में मेरी पैरवी करें। तो इमाम मालिक कहते हैं कि जो शख्स वाकई में नेक हो, लोगों की नज़रों में नेक बनने के लिए रयाकारी ना करता हो, दिखावा ना करता हो, उसके लिए लोगों की तरफ से जो मदा है, सना है, वो बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे लिसाना सिदकिन का एक मतलब तो ये है कि अल्लाह मेरे ज़ाहिर और बातिन को एक कर दे, यानी ऐसा ना हो कि मैं दिखाऊँ कुछ और अंदर से कुछ और हूँ। मेरा जिक्र खैर जो हो वो वाकई सच्चा हो कि फिर मैं वैसा हूँ भी। और दूसरी बात यह है कि देखें तारीफ एक झूठी तारीफ भी तो होती है, जो आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं झूठी। तो ऐसे ही हमें आदत ही होती है, बस जिसके पास गए हाँ बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, जिसके पास खड़े हुए हाँ जी आप बड़ा अच्छा बोलती हैं जी आप, झूठी तारीफें, डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, ये भी एक बुरी बात है। ये चापलूसी करना या खुशामदे करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंसान हमेशा सच बोले, ये ज़रूरी नहीं कि आपने किसी के मुंह पे मारना हो कि आज तुम बड़ी बदसूरत लग रही हो, ये नहीं बात है, ये नहीं मैं कह रही। लेकिन तारीफ करें तो सच्ची तारीफ होनी चाहिए, ऐसे ही बना बना के बनावटी नहीं। चलो सारे ही तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं भी तारीफ़ें करूँगी तो चलो खुश हो जाएगी मेरे से और फिर मुझे अच्छा समझेगी, फिर ये भी मेरी तारीफ़ करेगी। नहीं, तारीफ़ करें तो सच्ची करें। तो जो लोग तारीफ़ करें करते हैं वो तो ज़ाहिर देख के करते हैं ना, उनको तो नहीं पता अंदर क्या है। तो अल्लाह मुझे लिसाना सिदकिन देना, यानी वाकई उनकी तारीफ सच्ची हो, या वाकई मैं वैसा नेक हूँ। जैसे कोई कहना फलानी बड़ी नेक है, हो सकता है वो अंदर से बहुत बुरी हो, आप तो ज़ाहिर देख रहे हैं ना। तो यानी उनकी तारीफ़ को सच्चा कर देना, यानी अगर नेक वो कह रहे हैं तो मैं नेक हूँ भी, कितनी अच्छी बात है ना। तो सिद्क कहते हैं सच्चाई को, किस्ब कहते हैं झूठ को। तो ये इतनी प्यारी दुआ है और ज़िक्र खैर की दुआ है। अच्छी नामवरी बाद वालों में मेरी रहे। यानी ये भी सदका जारिया की दुआ है ना कि बाद वाले मेरे नेक अमल को देख के नेकियां करते ही रहें। तो वैसे अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया, नेक लोग भी अपनी तारीफों से डरते थे। हाँ, नेक लोग भी, और वो पसंद नहीं करते थे। वो तारीफ इंसान को ना अक्सर सुस्त बना देती है, और इंसान सोचने लगता है मैं तो खुद ही इतनी अच्छी हूँ, देखो सारे लोग मेरी तारीफें करते हैं तो मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो बंदा दीन में, ईमान में, नेकी में पीछे रहना शुरू हो जाता है। जब कोई सेटिस्फाई ही हो गया कि भाई सारे ही तारीफ़ कर रहे, सब कह ही रहे हैं अच्छा है, तो मैं तो फिर ये जो अभी हमने बात की गुनाहों पे रोने की, गुनाहों पे क्या रोएगा वो जिसको ये लगता है कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, सारी दुनिया कहती है मैं अच्छी हूँ, जिधर जाते मेरी तारीफ़ें होती हैं। हाँ, जनाजे पे अगर किसी की तारीफ़ की जाए तो वो उसके हक़ में गवाही बन जाती, लेकिन अब वो दुनिया से चला गया ना, ये तो अपनी सच्ची नामवरी आखिरी इनमें चाहते ना, बाद वालों में जब इंसान चला जाए तो तब तो थोड़ी वो सुन रहा है अपनी तारीफ़ें, तब उसको ख़तरा नहीं है। कि जैसे अगर आपके मुंह पे कोई तारीफ करता है तो तब ख़तरा है रियाकारी ना आइंदा से करने लगें या नेकी में ना पीछे रह जाए, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो अब क्या उसको ख़तरा। अब तो जो उसकी तारीफ़ करेगा अल्लाह के यहाँ लिखी जाएगी, वो ये गवाहियाँ लिखी जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमारे भी अमलों को खालिस बना दे, और हमें लोगों की तारीफ़ से बेनियाज कर दे, हमें नहीं परवाह होनी चाहिए कि लोग क्या तारीफ़ें कर रहे हैं। असल में अगर इंसान इखलास के साथ कोई काम करने लगे, अल्लाह ताला वैसे ही लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं सीख करूं, मैं मेरी तलाश रहे कि अब अच्छा अब कब तारीफ आती है, अब मैंने थोड़ा सा लेक्चर दे दिया, अब लोग आके मुझे कहें कि बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया, तभी मुझे चैन आएगा। ये गलत बात है, और ये हमारे अमल को ज़ाया कर देगी, बेनियाज हो जाए। और मैं तारीफ़ें करने वालों को भी कहूँगी, मत तारीफ़ें करा करें लोगों को, दूसरे को आप बर्बाद कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी मजम्मत की थी, उसके मुंह में खाक डाल दी, कि जो भी ऐसी कुछ हदीस आती है, अब मेरे सामने नहीं है, कि जैसे तुमने किसी के साथ बहुत बुरा किया, अगर तुम उसकी तारीफ़ करते उसके मुंह पे, तो ना तो तारीफ़ें चाहने वाला बनना चाहिए और ना ही लोगों को ऐसे करना चाहिए कि बस वो हर वक्त इसकी चापलूसी उसकी चापलूसी, जिधर खड़े होते हैं उधर दो चार इसको कह दी तो चलो जी अब इसकी गुड बुक्स में आ जाऊँ, उसकी गुड बुक्स में आ जाऊँ, ये नहीं अच्छी बात है। और ये भी नहीं अच्छी बात है कि हम इतने ही ऐसे हो जाएंगे दुनिया से जाएं तो लोग कहेंगे हाय शुक्र है जान छूटी दुनिया से गए, बल्कि अल्लाह मेरा अच्छा ही जिक्र हो। सोचना चाहिए कि लोग मुझे किस चीज़ से याद करेंगे, वो ही चीज़ होगी। याद रखिए, ये जो झूठी तारीफ़ें हैं ना, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत टेम्प्ररी होती हैं, आज ही है ना कल को उनको याद भी नहीं रहना। लेकिन सच्ची नामवरी अगर आप चाहते हैं, सच्ची तारीफ़ अपनी चाहते हैं कि जो बाद में हो, वो तभी होगी जब आप दुनिया में किसी को फ़ायदा पहुँचाएँगे, किसी के काम आएंगे, किसी के लिए फ़ायदेमंद बन जाएंगे। तब याद रखिए कि आप नहीं भी होंगे तब भी आपकी तारीफ़ होगी, वो बंदा आपके पीछे आपकी तारीफ़ करेगा। हमारे काम क्या होते, आगे 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 कहना आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, और पीछे कहना वैसे है ऐसी ही है, बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारे तो ये शेड्स होते हैं ना, ये झूठी तारीफ़ें हैं ना फिर। तो अल्लाह मुझे सच्ची तारीफ़ देना, वाकई जो किसी के दिल से निकलती हो, वो सच भी हो और मैं भी वैसा हूँ, और उसकी भी तारीफ़ सच्ची हो, मेरा ज़ाहिर व बातिन भी सेम हो, यानी वो मेरी सच्ची तारीफ कर रहा हो। तो अपने लिए हमें भी ये दुआ मांगनी चाहिए, वजाली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, ना बात वालों में मेरा जिक्र खैर ही रहे, लोग ना मैं दुनिया में ऐसे काम ना करूं कि लोग मुसीबत से जान छुड़ाने के ऊपर खुश हो, अच्छा शुक्र ही है। तो यही चीज़ें थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी, और भी आप जितना मर्ज़ी अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, लेकिन इस तरह की दुआएं ज़रूर मांगे, ठीक है। ये नहीं मैं कहती कि हम और मांगते जाते और ये नहीं मांगते, और भी अल्लाह ने ही देनी है, वो भी हमें अल्लाह ताला से ही ज़रूरत है, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो औलाद की कोई बात है, वो भी अल्लाह ने ही देनी है, वो भी मांगे, लेकिन ये भी मांगे ना। تو ابراہیم علیہ السلام کتنی پیاری دعا مانگ رہے ہیں، وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت، نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے. نعمتوں والی جنت کیوں کہا؟ اس لیے دنیا میں تو دیکھیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بہت سی نعمتوں سے انسان کو محروم رہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تیری جنت ہے نا، اس میں تو نعمتیں ہی نعمتیں. یہاں پہ اگر کوئی نعمت نہیں بھی ملی تو وہاں مل جائے گی نا. یہاں پہ کچھ قربانی دینی بھی پڑی تو کوئی حسرت کی ضرورت نہیں ہے. وہ نعمتوں بھری جنت ہے، اللہ اس کے وارثوں میں سے بنا دینا. وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو معاف کر دینا، اللہ وہ بھٹک گیا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. یہ نہیں کہ اس کی کوئی برائی کر رہے ہیں، ہاں اللہ مجھے پتہ ہے وہ گمراہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دینا. یہ ہوتے ہیں پیغمبر، یہ ہوتی ہے پیغمبروں کی خیر خواہی اور ان کی دل کی نرمی، کہ وہ باپ، یہ وہ والا باپ ہے جو لکڑیاں جمع کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، آگ کو بھڑکا رہا ہے اپنے ہی بیٹے کو ڈالنے کے لیے، اپنی اولاد کو. اب سوچ سکتے کہ وہ کیسا باپ ہوگا، اور ان کا رویہ کیا ہے. ہمیں آج تک کسی ہمارے رشتہ دار نے ایسی تکلیف نہیں دی ہوگی کہ آگ میں ڈالنے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہو، لیکن پھر بھی ہم کتنے سخت رویے رکھتے ہیں. بعضوں کے ساتھ کٹ آف کر دیتے ہیں، ساری ساری زندگی بات نہیں کرتے. بعضوں کہتے ہیں ہم نے کبھی اس کو معاف ہی نہیں کرنا، اور حتیٰ کہ والدین تک کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے کہا مجھے تو اپنے والدین کے ساتھ بڑی شکایت ہے، وہ ہمیں سیر پہ ہی نہیں لے کر جاتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے. میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ آپ کو والدین سے اس بات پہ اتنی بڑی شکایت ہو گئی، اور اتنا تو اب میں نے بھی ان کو سیر پہ نہیں لے کے جانا. دیکھیے ہمارے رویے کیسے ہوتے. اگر کسی نے منہ سے نہ یہ بات کی ہوتی تو میں نہ مانتی، لیکن ہم لوگ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین کا بھی گرمان پکڑ لیتے ہیں کہ وہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، ان کو ہی نہیں چھوڑتے. اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو باپ سے تکلیف پہنچی اور باپ جلانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. کون سا باپ ایسا کرے گا، لیکن پھر بھی اس کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ تو جائے جہاں مرضی جہنم میں جلے، مجھے کیا، جس نے مجھے جلانے کا کیا میں بھی اس کے لیے دعا نہیں کروں گا. ہمارے تو دلوں سے دعا ہی نہیں نکلتی کسی ایسے کے لیے جسے ہمیں تکلیف ہوئی ہو. کبھی مانگتے ہیں ہم ان کے لیے جس نے ہمیں دکھ دیا ہو کوئی؟ ہاں ہمارے ہاتھ میں ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کے لیے میں نے کیوں دعا کرنی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے باپ کے لیے. اور بہت ساری دعائیں جو کر سکتے تھے، باپ کو بھولے نہیں وہ. سبحان اللہ، کتنے بڑے ظرف، کتنے بڑے دل ہوتے ہیں پیغمبروں کے. ہم چھوٹے لوگ ہیں نا، ہمارے دل بھی تو چھوٹے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس ظرف بھی نہیں ہوتا. حالانکہ دعا مانگنے میں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی نہیں ہم مانگتے، وہ پیسے نہیں لگتے. اور یہاں پہ بخشش مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کافر ہے تو اس کو بخش دے؟ نہیں، کافر کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اس کے لیے بخشش مانگنا کیا ہوتا ہے، وہ کافر جب زندہ ہو تو، یہ نوٹ کر لیں، اس کے لیے بخشش مانگنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور ہدایت دے دے. یہ ہے بخشش کی دعا اس کے لیے، کہ توبہ کی توفیق دے دے اللہ اسے، وہ توبہ کر لے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ دعا کر رہے ہیں. لیکن جس وقت ان کے والد فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ اللہ کا دشمن تھا، تو پھر ان کی دعا کرنا بند کر دی. تو جب تک کوئی مشرک ہے، اس وقت تک زندہ ہے، اس وقت تک اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اس کو دعویٰ کرنے کی، اور دعا بھی کرنی چاہیے اس کے لیے. اور جب کوئی مشرک دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو بخشش کر دے. آپ نہیں کسی کے پاس کنڈولنس کرنے جائیں اور یہ کہہ نہیں سکتے کسی غیر مسلم کو مے اللہ فارگیو ہیم، مے گاڈ فارگیو ہیم، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اب بس اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اسے منع کر دیا گیا. تو ہماری پوری خیر خواہی ہونی چاہیے جب تک کوئی زندہ ہے، اور تب ہم اس کے لیے دعائیں بھی کریں ہم اس کے لیے. اور یہ صرف مشرک نہیں تھا نا، دیکھیں ہم ایک بات ہے، ہم پھر بھی مشرک کے لیے، کسی کے لیے، کافر کے لیے پھر بھی دعا کر رہے تھے. آپ اندازہ کیجئے جہاں پہ خون کا رشتہ ہو اور وہی رشتہ اتنی تکلیف دے، اتنی تکلیف دے. تو بعض دفعہ تو ماؤں کو دیکھا اپنی اولادوں کو بھی بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں جب ان سے دکھ ہوتا ہے، تو वालदैन के लिए तो दुआ करना बाद की बात है, औलादों को कह देती हैं कि अभी इसको ये हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखें सुभान अल्लाह कैसे थे। और हम इससे सीखें और अपने दिलों को हम भी बड़ा करें कि माफ़ कर दिया, अगर रिश्तेदारों में से किसी ने तकलीफ़ दिया माफ़ कर दें, अल्लाह ताला से भी दुआ करें अल्लाह इसको माफ़ कर दे। तो ये हौसला लेकर आएँ, ये बड़ा बड़ा दिल लेकर आएँ, ये भी पैगंबरों की सुन्नत है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना तड़पते थे, कितनी इन लोगों के लिए काफ़रों के लिए दुआएं करते थे, सारा दिन वो उनको अज़ियत देते थे, तकलीफ़ देते थे, मुखालफत करते थे, हर तरह से तकलीफ़ पहुंचाते थे, और रातों को खड़े होकर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए तड़प रहे हैं। तो देखें ये बहुत बड़ी सुन्नत है, हमें बस दूसरी सुन्नतें याद रहती हैं, ये भी एक सुन्नत है ना, तो दिल को बड़ा करने की ज़रूरत है। फिर वला तुखजिनी यौम युबाथून, अल्लाह तू मुझे रुसवा ना करना उस दिन जब उठाए जाएंगे लोग। तो रुसवाई कैसे, अभी भी मांगी, दुनिया में भी ये दुआ मांगी, और क़यामत के दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि क़यामत के दिन भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी वालिद से मुलाकात होगी। तो आप देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ना, कि आप देखेंगे कि उसका मुंह जो बाप का है ना, ज़िल्लत से और गर्दोगुबार से आलूदा हो रहा होगा। तो उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार तेरा मुझसे वादा है कि मुझे क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा। तो ये तो कितनी बड़ी रुसवाई है, अगर बाप जहन्नुम के अंदर घसीटा जा रहा है तो कितनी बड़ी रुसवाई है ना। मसलन ने किसी का बच्चा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सब की नस्लों को भी महफूज रखना कुफर से, शिर्क से, बिदात से। तो किसी का बच्चा मसलन उस दिन जहन्नुम में जा रहा हो तो उसके लिए कितनी रुसवाई है, कितनी ज़िल्लत है। तो वो कहेंगे या अल्लाह तूने तो मेरे से वादा किया था कि मुझे जलील नहीं करेगा, मुझे रुसवा नहीं करेगा अल्लाह, और ये दुआ भी उन्होंने मांगी भी है दुनिया में। तो अल्लाह ताला ये मेरा बाप जहन्नुम में जाए तो मेरी रुसवाई है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा सुन लो, जन्नत तो काफिर पे कतन हराम है, यानी इब्राहिम भी अपने बाप को नहीं बचा सकेंगे तो हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। हम सोचते हैं फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा, वो कर देगा मेरा कुछ। तो एक रिवायत में आता है कि इब्राहिम अपने बाप को इस हालत में देख के फरमाएंगे, देख मैंने तुझे कहा नहीं था कि मेरी माँ फरमानी ना कर। तो बाप जवाब देगा अच्छा अब नहीं मैं करूँगा, अब मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले आता हूँ। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था इस दिन मुझे रुसवा नहीं करेगा, अब इससे बढ़ के और रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप इस तरह रहमत से दूर है। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे खलील मैंने तो जन्नत को काफ़रों पर हराम कर दिया। फिर फरमाएगा इब्राहिम देख तेरे पैरों तले क्या है। तो आप देखेंगे एक बदसूरत बिज्जू होगा जो कीचड़ में लुथड़ा हुआ होगा और जिसके पाँव पकड़ कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, और यही असल में उनका वालिद होगा जो इस सूरत में कर दिया जाएगा ताकि किसी को पता ही ना चले। अल्लाह हू अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, हमारे आबाओ अजदाद को माफ़ फरमा दे और हमारी नस्लों को माफ़ फरमा दे। तो अगर देख लें उस दिन इंसान सोच ले फिर कि कोई किसी के काम नहीं आ सकता, यौम ला यन्फा मालुम वला बनून, बेटा भी बाप के काम नहीं आ सकता अगर बाप काफिर है, और बाप बेटे के काम नहीं आ सकता अगर बेटा काफिर है। तो समझ लें बात, यौम ला यन्फा नहीं फ़ायदा देगा उस दिन, माल फ़ायदा नहीं देगा, बिलियनेयर्स होंगे, दुनिया के बिलियनेयर्स वो वहाँ जगह कंगले होंगे। बल्कि एक जगह पर आता है कि उनसे पूछा जाएगा कि अगर तेरे पास ज़मीन भर के सोना हो तो तू क्या अपनी जान को छुड़ाने के लिए फ़िदिये में देने को तैयार है। तो इंसान कहेगा क्यों नहीं, एक ज़मीन भर सोना तो क्या, इससे डबल भी सोना हो ना, दो गुना भी हो तो तब भी मैं सारा देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आज बचना चाहता हूँ कि आज मैं बच जाऊँ। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनी, कितने लोगों से इंसान भाग रहा होगा, वो कहता होगा कि हाय कोई कहीं मुझसे कुछ मांग ना ले, हाय कहीं किसी का मुझे देना ना पड़ जाए। इस दिन इतनी अफरा तफरी होगी, उस दिन वो कहेगा मुझे इससे डबल भी हो तो मैं देने को तैयार हूँ, बल्कि ये मेरे सारे रिश्तेदार भी आग में डाल दो। सूरह मारिज में है ना, इंसान कहेगा मेरे बेटे, बेटों को तो इंसान इतना पसंद करता है दुनिया में कि उनकी दुआएं करता है, उनको अपना बाजू समझता है। इंसान कहता है मुझे तकलीफ़ हो जाए मेरे बच्चे को ना हो, कहेगा अल्लाह इसको भी डाल दे आग में, میری بیوی کو بھی ڈال دے، میرے بہن بھائیوں کو بھی ڈال دے، میرے والدین کو بھی ڈال دے، میرے سارے خاندان کو ڈال دے، اور اس کے بعد اینڈ میں کہے گا اللہ ساری مخلوق کو ڈال دے جتنی بھی کھڑی ہوئی ہے، بس مجھے بچا لے۔ تو انسان تو سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، مال تو کیا، اپنے پیارے رشتے تک بھی، جن کو کسی حالت میں نہ انسان بیچے اس دنیا میں۔ تو وہ جو مال ہوگا کہے گا دگنا بھی ہو تو تب بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، دنیا میں بہت کم ڈیمانڈ کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے زمین بھر کے سونا پہلے کما اور لے کر آ، یہ نہیں ڈیمانڈ کیا تھا، ایک توحید ہی ڈیمانڈ کی تھی، وہ بھی نہیں کی۔ تو اس دن کوئی کام نہیں آنے والا۔ یہ دو چیزیں جن کو انسان اپنی طاقت سمجھتا ہے، اور کسی کے پاس یہ دو چیزیں ہوں نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا کامیاب ہو گیا، بس دنیا میں میں سکسیسفل ہوں۔ سکسیسفل لوگوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے جس کے پاس مال ہے اور اس کے پاس بیٹے بھی ہیں۔ تو اس دن نہ کام آئے گا نہ مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے وہ چیز کام آئے گی، کیا؟ قلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آ گیا۔ کون سا قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ کون سا دل ہوتا ہے؟ سلامت دل، ہر شرک سے پاک، ہر بدعت سے پاک، کفر سے پاک، نفاق سے پاک، دل کی بیماریوں سے پاک جو دل ہے نا، وہ ہے وہ دل جو اللہ سے جڑا ہوا دل ہے، جو جہالت سے پاک ہے، دنیا کی محبت سے پاک ہے، حسد اور کینہ اور بغض سے پاک ہے، یہ وہ دل ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، تب ان سے مراسم بڑھاتے ہیں، تب ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ دل دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، کس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، کس کا کتنا بینک بیلنس ہے، اس کی اس کو پرواہ نہیں، اور ہماری شکلیں کیا ہے اس کی اس کو پرواہ نہیں، وہ ہمارے دل دیکھتا ہے۔ اگر دل ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دل پہ ہماری نظر پڑتی نہیں۔ ہم اپنی شکل کو ہی خوبصورت بنانے میں دن رات لگے رہتے ہیں کہ میری شکل فریش نظر آئے، میں میک اپ کر کے اپنے آپ کو اور خوبصورت بنا کے پیش کروں، لیکن دل ہمارے کیا ہے، وہ سیاہ پڑے میں، اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پہ نظر رکھتا ہے اس کو تو سنوار لوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن یہ دل صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آنے والا ہے، باقی یہ نفع دینے والا ہے، باقی یہ چیزیں دونوں کینسل کر۔ وہ مومن جس کا دل سلیم ہو یہ اس کو نفع دے گا، اور کافر کو کوئی چیز بھی نفع نہیں دے گی۔ آپ دیکھ لیں اپنے دل کو اگر ان برائیوں سے پاک کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی دل کے اوپر۔ اور یقین جانے یہ ساری زندگی کا ایک جہاد ہے، ساری زندگی کا ایک سٹرگل ہے کہ اپنے دل کو پاک کرتے رہیں برائیوں سے، گندگیوں سے، اس کی صفائی ہوتی رہے۔ جتنی دفعہ ہم شاور کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ دل کی صفائی کے لیے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم روز اگر شاور کرتے ہیں اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، دل اس سے بھی زیادہ جلدی گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرہ پلوٹیڈ ہے نا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ملکوں میں چیزوں پہ ڈسٹ زیادہ پڑتی ہے، نو پولوشن بہت زیادہ ہے، جلدی گندی ہو جاتی ہیں، صفائی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ہم یہاں پہ بہت عرصے بھی نہیں کریں، دو تین دن بھی نہیں کریں تو وہ ویسی گرد نہیں ہوتی، پولوشن نہیں ہے نا۔ ہمارے دل کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ پولوٹیڈ معاشرے میں، ہر طرف شرک، بدعات، برائیاں، گناہ، ٹیمپٹیشنز، اتنا کچھ ہے۔ اس کے اندر جو دل سروائیو کر رہا ہے وہ دل کتنا پلوٹ ہوتا ہوگا، کتنا اس کے اوپر گرد پڑتی ہوگی، وہ دل تو مریض بن جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کے بھی علاج کی ضرورت ہے، یہاں سے اس کو صاف کیا جائے۔ جب قلب سلیم ہوگا تو پھر تو یہ مال اور اولاد بھی کام آئیں گے، وہاں پہ وہ بھی نفع دیں گے، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے انسان نے اللہ کے راستے میں استعمال کیے ہوں گے، یہاں کا خرچ کیا ہوا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر قلب سلیم والا ہے تو تبھی ایسے خرچ کرے گا، اولاد بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی، مغفرت کی دعائیں کرے گی ماں باپ کے بعد۔ تو لیکن جب قلب سلیم ہی نہیں ہے انسان، پھر इन्हीं चीज़ों में, दुनिया की मोहब्बत में इसका दिल है, तो फिर जाहिर है वो माल भी वहाँ नहीं लगेगा कि अल्लाह को राज़ी कर ले, और ना ही औलादें वहाँ लगेंगी, ना ही औलाद सदका जारिया बनेंगी। तो कल्ब सलीम चाहिए। इसी तरह कल्ब सलीम का एक मतलब है कि वो जो सांप से डसा गया हो, जो सांप से डस लिया, सांप जिसको डस ले वो कैसा होता है? आराम से बैठता है? नहीं, तड़पता है ना। तो कल्ब सलीम वो जिल तो तड़पने वाला है, यानी उसको कहीं चैन ना आए, उसको हर वक्त उसके दिल में फिक्र हो अपने घर वालों की, अपने माशरे की, अपने लोगों की, अल्लाह की मोहब्बत में तड़पता हो, आखरत के खौफ से तड़पता हो। तो ये चीज़ें उसको चैन से ना बैठने देती हों कि आराम फरमा रहा है। कल्ब सलीम जो है ऐश परस्त नहीं हो सकता, बस आराम ही करते रहते हैं, वो तो तड़पता रहता है, उसको तो किसी पल चैन नहीं आता। वो ये नहीं कहता मेरी बला से मुझे क्या, जहाँ मर्जी जाएं, हमसायों में कुछ बुराई हो गई, उसका बच्चा कुछ बुरा कर रहा है, हमें क्या भाई, हम अपनी मौज करें। नहीं, वो कल्ब सलीम होता है। तो ये कल्ब सलीम दुनिया में होता है, आखरत में जाके तब नफ़ा मंद होगा। ये नहीं कि वहाँ जाके हम इसको कल्ब सलीम बनाएंगे, यहाँ बनाना है तड़पने वाला दिल, लोगों की खैरख्वाही के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की ये जो दुनिया में बुराई हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब सलीम ही रखते थे ना, तो जाके हिरा में बैठ जाते थे, इतने मगमूम रहते थे कि ये काम उनको अपना नहीं था। ये माशरे में क्या हो रहा है, ये लोग क्यों इस बुराइयों में, कल्ब सलीम था उनका। किसी की इस्लाह की अगर हमें फिक्र ही ना हो, हमें ये ना फिक्र हो लोग जिधर भी जा रहे हैं हमें क्या, ये रवैया हो, तो ये कल्ब सलीम तो नहीं। हमें अपनी आखरत की फिक्र नहीं, अल्लाह से मोहब्बत नहीं दिल में, ये कल्ब सलीम नहीं है फिर। और उस दिन क्या होगा, वो उजले फतिल जन्नत लिलमुत्तकीन, उस दिन जन्नत करीब कर दी जाएगी मुत्तकीन से। क्यों करीब कर दी जाएगी? कोई चीज़ करीब, अच्छी चीज़ करीब कर कब कर दी जाती है कि इंसान जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाए, यानी पुल से रात क्रॉस करते ही जन्नत के दरवाजे भी गेट भी खुले होंगे कि एक लम्हे का भी इंतज़ार ना करना पड़े, जल्दी से चले जाएँ। और बुर्रिज़त अल-जहीम लिल-ग़ावीन, और खोल दी जाएगी जहन्नम गुमराहों के लिए। उसको करीब नहीं किया जाएगा, क्यों? उसके लिए घसीट घसीट के ले जाया जाएगा, घसीट के ले जा रहे हैं वो, उनको खौफ ज़दा है, देख के दूर से उसकी जिंगाड़े सुन रहे हैं, उसका गुस्सा सुन रहे हैं, खौफ के मारे कांप रहे हैं, और हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, कलेजे मुंह को आ रहे हैं। और सोचे ना कि अब देखने का भी एक अजाब है, और वो गुनाहगारों को शोर मचा मचा के अपने तेवर दिखा रही है, शोर मचा रही है, जिससे और इनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। अब देख लेना कि एक तो होता है ज़िबा होना, छुरी के नीचे आना, एक छुरी को देख के जो जानवर की हालत हो जाए, वही वाली बात है कि जहन्नुम को देख के उनको उनकी हालत गैर हो जाएगी। तो वो खोल दी जाएगी उनके सामने, यानी उनके सामने जाहिर कर दी जाएगी गुमराहों के आगे कि ये है जिसमें तुमने जाना है। फिर उसके दरवाज़ों पे खड़ा करके पूछ गिछ होगी, बताओ तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, किसी ने नहीं तुम्हें बताया था जो तुम इस तरह के आमाल लेकर आ गए कि जहन्नुम में जाने के काबिल हो गए, समझाया नहीं था कुछ किसी ने तुम्हें? ये सारी बातें होंगी, फ़ौरन से नहीं जहन्नुम में चले जाएंगे। वकील अलहम ऐन मा कुंतुम ताबुदून, और उनसे कहा जाएगा, यानी कोई फरिश्ते उनसे पूछेंगे, ऐन मा कुंतुम ताबुदून, वो कहाँ हैं जिनकी तुम इबादत करते थे, जिनकी तुम पूजा पाठ करते थे, जिनके आगे तुम बैठे रहते थे मुजावर बन के, जिनकी तुम गुलामी करते थे, मिन दून अल्लाह अल्लाह के सिवा, हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, क्या वो मदद कर रहे हैं तुम्हारी या अपनी मदद कर रहे हैं? वो अपनी तो मदद कर लें, किसी और की तो मदद क्या करनी, वो अपनी, लेकिन उस दिन दिखाया जाएगा ये पत्थरों के बुत भी जहन्नुम में डाले जाएंगे ताकि वो देखें और हसरत करें। और जो जिंदा होंगे वो तो वैसे ही दुश्मन हो जाएंगे अपने आबिदों के, वो दुश्मन होंगे, वो झूठे माबूद जिनकी आज जिंदों की आज। और मैं देख रही हूँ कि आजकल ये बुतों से भी ज़्यादा, जैसे हिंदुइज़्म में भी बुतों से भी ज़्यादा इनके जिंदा लोगों की इन्होंने पूजा शुरू कर दी है, उन्हीं के आगे सजदे करते हैं, उन्हीं की बड़ी बड़ी तस्वीरें घरों में लगाई हुई हैं, उन्हीं के पता नहीं पूजना शुरू हो गए इंसानों के जो जिंदा है। तो वो तो अपनी भी ना, वो अपनी इबादत से खुश होते हैं, वो अपनी इबादत कराते हैं, और वो भी बेबस और जो उनके मानने वाले हैं वो तो बेचारे बेबस थे ही, तो कहेंगे कहाँ है वो ना, छुड़ाएं तुम्हें लाके, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे, और यहाँ अपनी ही मदद कर लेते चलो। लेकिन उस दिन वो दुश्मन होंगे। ये जो कहा है ना इब्राहिम अलैहि सलाम ने कि ये मेरे दुश्मन है, वाकई हर वो चीज़ दुश्मन है इंसान की जो अल्लाह की याद को भुला दे, अल्लाह से दूर कर दे, वो वहाँ पर जाकर दुश्मनी पता चल जाएगी कि ये तो दुश्मन थे दोस्त के भेस में। फकुब की वो फीहा हम वलगावून, तो ऊंधे मुंह गिराए जाएंगे उसमें। धक्का दे देना किसी को पीछे से और लुढ़का देना, ये है कुब की बू। तो अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो ऊंधे मुंह ऊपर से गिराए जाएंगे, यानी इसका मतलब जहन्नुम नीचे को है, वो ऊपर से धक्का दिए जाएंगे, वो भी और वो जुनूद जुनूद इबलीस आजमाऊन, और इबलीस के लश्कर भी। इंसान उस दिन ये नहीं कह सकेगा ये इबलीस है इसने मेरे बेड़ा गर्क किया, वो भी तो जहन्नुम में जल रहा होगा। तो एक दूसरे के ऊपर डाल दिए जाएंगे, यानी एक कुब की बूब में ना लगातार का माना आता है, बार बार का, तो एक नहीं जा रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह गिराए जाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर पायलअप हो रहे होंगे और मुंह के बल लुढ़काए जा रहे हैं, जो कि और भी जिल्लत है। कालू वहम फीहा यख्तसिमून, वो कहेंगे इस हाल में, इस हाल में होंगे कि वो आपस में लड़ रहे होंगे, इस हाल में कहेंगे क्या, तल्लाही इन कुन्ना लफी दलाल मुबीन, अल्लाह की कसम हम तो बड़ी खुली गुमराही में थे। इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, के जब हमने बराबर कर दिया था रब्बिल आलमीन की, यानी वो अपने मुंह से इतराफ़ करेंगे। दुनिया में तो आज समझ नहीं आ रही ना, आज नहीं कोई सोच काम ही नहीं कर रही, आज अकल को साइड पे रख दिया, तो अब बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी कि हम ही थे जो गुमराही में थे, और हाँ क्या गुमराही थी हमारी, हमने बराबर कर दिया था रब्बुल आलमीन के। अस्तग़फिरुल्लाह, अगर कोई मुसलमान ऐसा करे तो फिर उसका अंजाम सोचें क्या होगा, ये इससे कम तो नहीं होगा कि किसी को भी रब के बराबर कर देना, वो कोई पैगंबर हो, वो कोई फरिश्ता हो, वो कोई औलिया अल्लाह हो, वो कोई सहाबी हो, कि अल्लाह के बराबर उनको कर दिया जाए। अस्तग़फिरुल्लाह, जो सिफात अल्लाह ताला के अंदर हैं वो उनके अंदर समझी जाएं, जो भी ऐसे करने वाले हैं। वमा अदल्लना इल्लल मुजरिमून, और नहीं गुमराह किया हमको मगर मुजरिमों ने, पहले अपना कसूर मान के फिर कहा कि लेकिन असल मुजरिम तो ये हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, वो मुजरिम थे जिन्होंने हमें गुमराह किया। अब चाहे वो जानबूझ के करते थे या फिर अनजाने में, वो खुद भी बहके हुए थे और इनको भी बहका रहे थे, लेकिन अब जलेंगे तो सभी ना, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम देके तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उस दिन इन्होंने हमें कहा था, इसने मुझे कहा था, असल में जब इंसान मुसीबत में पड़ता है ना, जब उसके ऊपर मुश्किल आती है, दुनिया में भी देखे ना, हम फौरन फिंगर्स पॉइंट करना शुरू हो जाते हैं, वो जी फलां, उसने किया, उसने मुझे लेट कराया, उसने ऐसा, छोटी छोटी बातों में भी आप देखें, हमारे ऊपर ज़रा भी इल्ज़ाम आने लगे तो हम फौरन, या हम कभी मुश्किल में हों तो, जब इंसान के ऊपर स्ट्रेस होता है, मुश्किल होती है, तो झगड़े भी होते हैं ज़्यादा, और फिर इंसान इल्ज़ाम भी लगाता है। तो ये भी झगड़, एक मुसीबत जो जहन्नुम की होगी वो ये भी होगी कि वहाँ पे लोग झगड़ रहे होंगे, एक दूसरे पे लानते कर रहे होंगे, चीखो पुकार होगी, और कहेंगे कि अल्लाह हमें, हमने इनको दुगना अजाब दे, हमारे से ज़्यादा क्यों इन्होंने हमें इस तरफ लगाया था। लेकिन उस दिन सबका अजाब ही दुगना होगा, हमें नहीं गुमराह किया मगर मुजरिमों ने। फ़मा लना मिन शाफ़ईन, तो नहीं हमारे लिए अब कोई सिफारिश करने वाला। यहाँ से पता चलता है कि शिफात बरहक है, लेकिन काफरों के हक में कोई शिफात करने वाला नहीं होगा। जो शिर्क करके मर गया ना, उसको शिफात नहीं मिल सकती, याद रखें। वाला सदीक़न हमीम, और वो कहाँ हैं जो पक्के जिगरी दोस्त होते थे, दुनिया में लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे कि मेरे दोस्त को कैसे किसी ने कुछ कह दिया, वो दोस्त अब तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, हमारे पास तो कोई सदीक़न हमीम भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उस दिन की हसरों से बचाए। फ़लो अन्न लना करतन फनकूना मिनल मुमिनीन, अब सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि अगर हम ना, यहाँ पे कोई बचाने वाला है ना कुछ है, अब हमें वापस भेज दिया जाए, एक दफ़ा पलटना हो जाए तो हम ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ना कि अगर इनको भेज भी दिया जाए, अव्वल तो भेजा जाएगा ही नहीं, भेज भी दिया जाएगा तो फिर यही करेंगे। क्यों? इसलिए कि देखें, हमारी हमें नोटिस करें आप ये बात कि कितनी दफा जिंदगी के अंदर ऐसे मौके आते हैं कि हमें धचका लगता है, हमें धचका लगता है, हमें रियलिटी पता चलती है और हम कहते हैं हम बहुत नेक हो जाएंगे, अब बस अल्लाह एक दफ़ा मुझे ज़िंदगी मिल जाए, एक दफ़ा ये बीमारी ख़त्म हो जाए, एक दफ़ा मैं इस मुसीबत से निकल, मैं देखना कितनी नेक हो जाऊंगी मैं ऐसे। उसके बाद क्या होता है, सारे वादे वईद ख़त्म, बस कुछ पता ही नहीं, कभी कोई वादा किया भी था, कोई मन्नत मानी थी, कोई नज़र मानी थी, कोई नेक होने की बात भी की थी। तो ये तो दुनिया में भी हमारी यही तरीके रहते हैं, वहाँ से जाके कौन आके फिर उसके बाद वही वही करेगा, अल्लाह ताला को पता है कि नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं उस वक्त इतनी हसरत उनको हो रही, काश एक दफ़ा वापस लौटाना हो जाए, काश एक दफ़ा हमें मौका मिल जाए। कितना सख्त पछतावा होगा और इतनी हसरत होगी, क्योंकि ये सारे मौके इंसान को याद आएंगे जिसमें इंसान नेकी के काम कर सकता था, सीधा हो सकता था, सिरात मुस्तकीम पर आ सकता था, लेकिन नहीं आया। इन नफीदा अलिकल आया, इसमें अलबत्ता एक निशानी है। समझ आ रही निशानी, सबक मिल रहा है? अमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन अक्सर ही लोग ऐसे हैं ईमान ही नहीं लाते, ये सारी बातें सुन के भी मानते ही नहीं, फिर वही डगर, फिर वही चीज़ें, फिर वही काम, सीधे होते ही नहीं, ये सब सुन के भी। इसमें तो आयत है लेकिन वो नसीहत नहीं पकड़ते। وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, और बेशक तेरा रब बहुत कुव्वत वाला, ताकत वाला, गलबे वाला है, अथॉरिटी है उसके पास और रहम करने वाला भी है। दोनों सिफात कैसे एक साथ आई? इसलिए क्योंकि जो सरकश है, बागी है अल्लाह का, उसके लिए वो कुव्वत वाला, गलबे वाला है, अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकता, और जो अल्लाह ताला के आगे गिर जाएं, अपने आप को सबमिट कर दें, तो उनके लिए रहम करने वाला भी है। अल्लाह ताला हमें इन आयात से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। बार बार आता है इन फ़िज़ा लिकल आया वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन, हम अक्सरियत में से ना हों जो ईमान नहीं लेकर आते, हम उन अकलियत में से हो जाएं जो कि बात सुन के दिल में लेते हैं, उससे सबक लेते हैं। कितना बड़ा सबक है, अक्सर लोग तो उधर ही को चलना चाहते हैं ना जिधर सब चल रहे होते, अक्सरियत में शामिल होना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुरान कह रहा है अक्सरियत मोमिन नहीं है, तो हम कहते हैं चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, सारे जिधर चल रहे हैं ना, बस देख लें आप भेड़ चाल है दुनिया में, आप बाहर देख लें जो जिस तरफ को माशरा चल रहा होता है सब उसी तरफ चलने लगते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं सब वो ट्रेंड्स फॉलो करने लगते हैं, कोई भी अगेंस्ट द वाटर स्विम करने की जरूरत नहीं करता, हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन यहाँ से देख लें कम लोग होंगे जो ईमान लाने वाले, तो हम उन कम में से होना चाहते हैं कि इस अक्सरियत में से? अक्सरियत तो बुरों की ही है जो इनकार ही करते हैं। तो ये मत देखें सारी दुनिया किधर को जा रही है, हम क्या मिसाल देते हैं सारी दुनिया उधर चल रही है तो हम पता नहीं किधर को चल पड़ी हो, नहीं, सारी दुनिया तो देख लें कुरान क्या बताता है, अक्सरियत नाशुक्री, अक्सरियत ईमान नहीं लेकर आती, तो हम अक्सरियत में जाना चाहते, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ जाने के लिए ज़रा कुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए, मुखालफतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लोगों की ताने सहने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, तो हम डर जाते हैं, फिर हम चल पड़ते हैं उधर कोई जिधर अक्सरियत चल रही है। लेकिन बादे मुखालिफ से ना, वो क्या है ना, तुंदिये बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। तो आप बादे मुखालिफ से क्यों घबराते हैं, ऑपोजिट विंड से क्यों घबराते हैं? ये तो वहाँ आएंगी चीज़ें, जब भी आप उलट चलेंगे आपको रिजेंटमेंट मिलेगी, लेकिन घबराना नहीं है, चलते ही रहना है। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जो उस पर सच्चा और पक्का ईमान लाने वाले, और हमें कल्बे सलीम अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
الحمد لله يا بلوم